તારીખ 20/3/1999 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 448 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 391
અનાદિ કા અભ્યાસ હોને કે કારણ પૃથક કરને મે વિકલ્પાત્મક પ્રયત્ન મે ભી કઠિનાઈ લગતી હૈ તો ક્યા કરના ક્યા પ્રશ્ન હમારી પરિણમન મે રાગ ઓ જ્ઞાન દુઃખા તન્મય એક ભી પરિણમ હૈ આત્મા ज्ञान से राग के साथ तन्मय रूप से तद्रूप होकर के एकाग्र होकर के अभेद होकर के परिणमन कर रहा है। ऐसा अभ्यास मैंने प्रैक्टिस अनादि का होने के कारण अनादि से ही प्रैक्टिस होने के कारण राग और ज्ञान को पृथक करने में यानी आत्मा से राग को पृथक अनुभव करने में विकल्पात्मक प्रयत्न में भी कठिनाई लगती है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक विकल्पात्मक और एक सहज, यानी एक कृत्रिम और एक सहज। शुरू शुरू में कृत्रिम विकल्पात्मक प्रयास होता है, फिर प्रैक्टिस से सहज हो जाता है। तो सहज तो हमारा प्रयत्न नहीं है, प्रश्नकार का क्या प्रश्न है कि सहज प्रयास तो हमारा नहीं है। हमने सुना है, सम्मत किया है कि राग और ज्ञान भिन्न भिन्न अनुभव करें तो ही राग की आकुलता और दुख मिटे। तन्मय होने में तो बहुत आकुलता होती है क्योंकि राग मात्र दुख रूप है, आकुलता रूप है। अब सुना है, सोचा है, सम्मत किया है तो उसको भिन्न अनुभव करना चाहिए, पृथक अनुभव करना चाहिए। ऐसा समझ में आने से प्रयास चालू करते हैं, कृत्रिम रूप से भी, विचार करके भी, विकल्प करके भी। तो ऐसे विकल्पात्मक प्रयत्न में भी कठिनाई लगती है तो क्या करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कठिन किसको लगता है, कोई भी विषय हो कठिन कब लगता है कि इस विषय में हम तैयार नहीं हैं, कच्चे हैं तो हमको कठिन लगता है। कोई भी काम हो, जिस विषय में जो एक्सपर्ट होता है उसको वही काम कठिन नहीं लगता। जैसे 15 साल की बच्ची रोटी बना लेगी लेकिन 70 साल का बूढ़ा आदमी रोटी नहीं बना पाएगा, उसको कठिन लगेगी कि रोटी बनाना बहुत कठिन काम है और वो बात बात में बना लेगी। क्यों? उसको सहज अभ्यास हो गया है, प्रैक्टिस हो गई है, उसको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। नई नई रोटी बनाता है तो एक रोटी भी नहीं बना पाएगा। तो कोई भी काम है वो अभ्यास से सहज होता है, प्रैक्टिस करने से सहज हो जाता है और शुरू शुरू में तो सभी काम कठिन ही लगता है। तो ये प्रश्न है कोई शुरुआत वाले का है, इसका प्रश्न है। प्रश्न दिखाता है कि ये शुरुआत का प्रश्न कर रहा है कि हमको तो विकल्प से भी प्रयत्न करना चालू करते हैं तो कठिन लगता है कि भीतर में राग और ज्ञान भिन्न भिन्न कैसे अनुभव करे। दोनों का उदय एक साथ है, राग का उदय और ज्ञान का उदय एक साथ है और दोनों मिलकर हम विचार करते हैं, दोनों मिलकर के हम सभी कार्य करते हैं, खाने पीना, चलना उठना बैठना, कुछ भी काम करते हैं उसमें दोनों बात होते हैं, राग भी होता है ज्ञान भी होता है। और एक साथ होता है तो अलग अलग भिन्न भिन्न अनुभव गोचर नहीं होता है। और आपका उपदेश में वो बात है, भगवान के उपदेश में भेद ज्ञान है, आप भिन्न भिन्न अनुभव करो। ये एकत्व है वो तो मिथ्या अनुभव है, आत्मा राग रूप है नहीं, राग आत्मा का स्वरूप है नहीं, फिर उसमें अपनत्व एकत्व कैसे करते हो। लेकिन हमको कठिन लगता है, ये अपनी समस्या बताइए, उसका समाधान।
राग एटले तमाम विभाव ने लेवा,
हाँ कोई भी विभाव लो, राग द्वेष मोह रति अरति हास्य शोक जुगुप्सा, कोई भी सभी प्रकार के विकारी परिणाम विभाव परिणाम ले लेना। समाधान, अनादि का अभ्यास हो गया है, उल्टा अभ्यास, अनादि का दोनों को एक रूप अनुभव करने का अभ्यास हो गया है, इसलिए उससे छूटना तथा परिणति में लाना कठिन पड़ता है। परिणति तो बाद में बनेगी, पहले तो प्रयास करें तो भिन्न भिन्न अनुभव करने का थोड़ा 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 काम होगा, तो कठिन पड़ता है वो बात तो ठीक है, कठिन पड़ेगा, शुरुआत वाले को तो कठिन पड़ेगा ही। विचार के द्वारा निर्णय किया हो फिर भी पृथक करने का कार्य क्रियान्वयन कठिन होता है। विचार करना कि राग का लक्षण आकुलता है, राग जानता नहीं है, राग अंधा है। ज्ञान जानता है, उसका लक्षण जानना ऐसा होता है, और मात्र जानने में निराकुलता है। तो ऐसा विचार के द्वारा निर्णय किया हो वो करना उतना कठिन नहीं है, विचार करके समझना सम्मत करना निर्णय करना वो उतना कठिन नहीं है, फिर भी पृथक करके उसका पृथक करने का कार्य जो है उसको क्रियान्वयन मैंने एग्जीक्यूट करना, उसका अमलीकरण करना, उसका परिणमन करना, वो कठिन होता है, वो प्रयोग का विषय हो गया। विचार है वो थिंकिंग स्टेज है, उसमें विचार करना आसान है क्योंकि उतनी ताकत है हमारे में, मनुष्य में विचार करने की ताकत अच्छी है, किसी भी चीज का किसी भी विषय का अच्छी तरह विचार कर सकता है, लेकिन उसका अमलीकरण करना वो दूसरी बात हो जाती है, उसको ताकत चाहिए और हुशियार चाहिए, तो वो कठिन होता है। अनादि से मिश्रित परिणति वर्तती है, विभाव और ज्ञान की, विकार और ज्ञान की मिश्रित परिणति वर्तती है। यदि वह एक बार पृथक हो जाए तो फिर उसे मार्ग सब सरल हो जाए, वो श्रुति प्रैक्टिस करके वो पृथक हो जाए, यानी पृथक किया जाए, राग और ज्ञान को पृथक किया जाए तो फिर मार्ग सरल हो जाता है, यानी कुछ प्रैक्टिस होने से सरलता हो जाती है कार्य करने की। शुरू शुरू में कठिन लगता है, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस बनती है उतना काम सरल लगता है, वो तो कोई भी काम ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में कठिन लगता है, बाद में वो सरल लगता है काम करने में। यद्यपि यह प्रथम भूमिका कठिन है क्योंकि अनादि से एकत्व बुद्धि है, उल्टी प्रैक्टिस अनादि से बहुत है, अनादि से मैंने जिसकी गिनती नहीं की कर सके उतना लंबा काल है, कितना लंबा काल है जिसकी गिनती हम नहीं कर सके, अरबों के अरबों वर्ष है। वर्ष क्या है? अरबों के अरबों पल्योपम है। इतनी उल्टी प्रैक्टिस हो गई है तो उसको शुद्धि करने में तो कठिन पड़ता ही है। परंतु स्वयं विचार मंथन करते करते आत्मा अंतर से मार्ग निकाल लेता है। तो क्या करना चाहिए? तो विचार करना, उसका मंथन करना, चिंतन करना गहराई से। ऐसा करते करते आत्मा अंतर से मार्ग निकाल लेता है। वो बात थोड़ी समझने में, अंतर से माने क्या? कि भावना अंतर से होती है तो रास्ता निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा राग के साथ जो एकत्व है उसमें हमारा राग रस भी है। राग रस बहुत है, राग रस थोड़ा नहीं है, बहुत है। जिसको राग और ज्ञान को भिन्न करने का, वेद ज्ञान करने का अभिप्राय है और प्रयत्न भी है, तो सबसे प्रथम वो राग रस कम हो जाता है। क्या होता है? राग रस कम हो जाता है। राग रस कम होने से फिर ये काम थोड़ा आसान होता है। इसलिए विभाव रस को मंद करने का प्रयोग मुमुक्षु की भूमिका में भूमिका अनुसार होता है। मुख्य काम मुमुक्षु का यही है, विभाव रस को मंद करना, ये मुख्य काम है। इसके लिए जो भी बाह्य प्रयोग है वो अलग बात है, लेकिन अंदर की बात जो है वो राग रस को मंद करने की है। चाहे हम शास्त्र पढ़ें, चाहे पूजा भक्ति करें, चाहे दयादान यात्रा करें, या चाहे व्रत नियम उपवास करें, कुछ भी करें, ये सब आउटलाइन है। अंडरलाइन है तो राग रस कम करने की है, और उस हेतु से कुछ भी प्रयोग किया जाता है।
चिंतन मंथन में
प्रयोग होता नहीं है। हाँ, चिंतन मंथन में थोड़ी दृढ़ता बढ़ती है। प्रयोग है वो एक एग्जीक्यूटिव स्टेज है। सबसे पहले थिंकिंग स्टेज होता है, उसके बाद उसका डिसीजन निर्णय लेना होता है, उसमें दृढ़ता आती है। जब दृढ़ निर्णय होता है तो फिर वो अमलीकरण में आता है, एग्जीक्यूशन में आता है, तो उस तरह से आगे बढ़ा जाता है। बात तो व्यवस्थित है। इसलिए जिसको स्वयं विचार मंथन करते करते उस विषय में आत्मा अंतर से मार्ग निकाल लेता है, वो उस तरह से निकाल लेता है कि राग रस कम होता है, तो अलग पड़ना, भिन्न होना ज्ञान से सुगम पड़ता है। जिसको तीव्र राग रस होता है वो तो राग के साथ उसका ज्ञान बह जाता है। क्या होता है? उसका ज्ञान राग के साथ बह जाता है। इसलिए शुरुआत इस प्रकार से होती है, राग रस मंद करने से। जिसका राग रस तीव्र होता है उनकी राग की शक्ति, राग की ताकत ज्यादा है, क्योंकि परिणाम के रस में परिणाम की ताकत है। तो राग है, विभाव है, दुख रूप है, मलिन भाव है और हमारे स्वरूप से विरुद्ध है, तो उल्टी ताकत ज्यादा है उसमें। रस ज्यादा है तो उल्टी ताकत भी ज्यादा है। तो सबसे पहले ताकत तोड़नी होगी। ताकत तोड़ने से फिर उसको बिल्कुल नाश कर सकते हैं। ताकत वाले का नाश होना मुश्किल है, पहले उसकी ताकत को खत्म करनी पड़ती है। ये इसकी स्ट्रेटेजी है। कोई भी काम करने की व्यवस्था होती है तो उस तरह से वो बात है। बहुत अनुभव सिद्ध बात ज्ञानियों ने की है। अनुभव सिद्ध मैंने अनुभव से वो आर पार पास हो गए और अनुभव में सफल हुए, उस तरह से उन्होंने ये बात की है। पर हम भी इस प्रकार के प्रयोग की शुरुआत करें तो हमको इस बात का विश्वास आता है, प्रतीति आती है कि कहने वालों ने बात को सही कही की है, वो बात समझ में आ जाती है। जिसे सच्ची जिज्ञासा और लगन हो वो अंतर से मार्ग ढूंढ ही लेता है। ये काम भीतर का काम है, राग और ज्ञान भीतर के परिणाम है, तो इसका उपाय भी भीतर में है। मार्ग माने उपाय, उसका इलाज भी भीतर में ही है। राग इसका अभाव करके वितराग होना, पूर्ण वितराग होना, वो हमारा ध्येय है, वो हमारा आदर्श है, वो हमारा गोल है। तो उसका इलाज जो है, उपाय है, वो भीतर में है, अंतर में है। किसको वो मिलता है, कौन वो ढूंढ सकता है, खोज सकता है? कि खोजी वृत्ति वाला लगन से खोज करता है। तब इसके लिए जिज्ञासा मैंने भावना तीव्र होनी चाहिए, उसके लिए लगन होनी चाहिए और खोजी वृत्ति होनी चाहिए और एक लय से काम होना चाहिए। कभी ये काम होता है और लगन होती है तो एक लय से होता है। तो ये लगन है वो लगाई नहीं जाती, उसमें कृत्रिमता नहीं चलती। लगन है वो सहज वृत्ति है जीव की। और बहुभाग धर्म के क्षेत्र में निष्फल होने का कारण यही है कि लगन नहीं आती। कृत्रिमता से सब कुछ कर लेते हैं, शास्त्र स्वाध्याय भी कर लेते, सत्संग कर लेते और सब साधन भी कर लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और सब कुछ कुछ न कुछ तो मनुष्य करता ही है संप्रदाय में भी, परंतु लगन से काम होना दूसरी बात है। ये कार्य की सफलता का प्रारंभ में प्रारंभिक मेन पॉइंट है। ये और ये सहज होता है। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सहज लगन कैसे लगे, जब लगन लगाई नहीं जाती कृत्रिमता से, तो सहज लगन कैसे लगे? कि सत्संग के दौरान अगर हमको हमारे कार्य का और हमारे ध्येय का, हमारे नुकसान का और हमारे मुनाफा का, लाभ का सही मूल्यांकन होने से ही लगन लगती है, कैसे लगती है। स्पष्ट बात वो है कि अगर हम इस मार्ग में सफल हो गए तो जैसे हमारे तीर्थंकर आदि महात्मा सिद्ध पद को प्राप्त किया ऐसा हमको भी हो जाएगा। मतलब साधी अनंत काल, अनंत काल, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत परमानंद के साथ सीतालिंग में विराजमान होना होगा। और संसार के चारों गति के दुख कभी भी हमको भोगना नहीं पड़ेगा। सबसे पीड़ा जन्म मरण के काल में होती है ज्यादा। बीच के काल में तो असाता वेदनी का जब जब उदय होता है तो पीड़ा होती है। यह बात हुई शारीरिक पीड़ा के कारण से होने वाला दुख है। सबसे ज्यादा कोई दुख है तो वो टेंशन का होता है, तनाव का होता है कि जिसके कारण मनुष्य खुदकुशी भी कर लेता है, सुसाइड करता है और टेंशन बढ़ जाता है तो मरने का पसंद करता है, जिंदा रहना पसंद नहीं करता है। वो सबसे ज्यादा दुख है। और विश्व में टेंशन की कोई दवाई नहीं है। बाकी के जो दुख है इनके छोटे मोटे इलाज हैं, परंतु टेंशन का कोई इलाज नहीं है। ये टेंशन का इलाज हमारे वितरागों ने वितराग मार्ग में बताया है, दर्शाया है। ये सभी प्रकार का दुख का अभाव हो जाए, किंचित मात्र एक अंश भी दुख भोगना नहीं पड़े और संपूर्ण सुखी हो जाए, अगर ऐसा कोई उपाय हमको मिलता है तो इसके लिए हमारी क्या लगन नहीं होनी चाहिए क्या? अरे हमको 5-25-50 लाख मिलता है तो हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं। पागल मैंने खाना पीना सोना सब भूल जाते हैं, परिवार को छोड़ करके देश विदेश में चले जाते हैं। गए कि नहीं है? क्यों गए? पैसा ज्यादा कमाने के लिए। तो कमाते ही थे, लेकिन इससे ज्यादा कमाना, इससे ज्यादा कमाना है तो सब कुछ हम पसंद करते हैं। करते क्या नहीं करते? हमको लाभ दिखता है, लाभ समझ में आता है। लाभ होगा तब तो होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन समझ में आता है तो हम पुरुषार्थ करते हैं इसके पीछे। अब इतना बड़ा लाभ हो कि जिसकी गिनती करना मुश्किल हो जाए, जिसके आगे लाख करोड़ अरब रुपये तो कुछ है ही नहीं, क्यों कि इसका होने के बावजूद भी टेंशन होता है। आज वेस्टर्न कंट्रीज में मल्टी मिलियनर्स लोग हैं, मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स, फिर भी टेंशन में बहुत है। बोलो, नींद की गोली खाना पड़ता है, सोने के लिए दारू पीना पड़ता है, गहन में सो जाए, काम करने के लिए मूड नहीं रहता है, बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, हार्ट अटैक आता है, कैंसर हो जाता है। क्यों? टेंशन। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुविधा होने से टेंशन नहीं आता। आजकल तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत सुविधा हो गई इसका टेंशन है, ऑटोमाइजेशन बढ़ गया, अब कुछ करना कम रह गया, कुछ करना ही नहीं रहा, तो उस तरह से ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, करे क्या, व्याकुलता बढ़ गई। और हम लोगों को मालूम नहीं क्यों बढ़ गई कि जो भी संयोग अनुकूल हुआ उसमें अपनत्व तीव्र हो गया, वो व्याकुलता बढ़ी है और उसकी बेचैनी है। जीव एक सचेतन पदार्थ है, साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखें तो कि जीव एक सचेतन पदार्थ है और हमारे जितने भी संपत्ति संयोग है वो अचेतन है। सचेतन अचेतन के साथ जितना जुड़ता है, जितना तीव्रता से जुड़ता है, जितना जोर से जुड़ता है, उतनी उसको बेचैनी होती है, अशांति होती है। यही अशांति का मूल कारण है। और जितने परिणाम स्वरूप में समाते हैं, भीतर में शांत होते हैं, उतनी शांति रहती है। तो वो लोग शांति अशांति का विज्ञान को नहीं जानते। वो विज्ञान को हम लोग अध्यात्म विद्या कहते हैं। यहाँ पर साइंस एब्सोल्यूट साइंस है। तो उनको समझते नहीं, जानते नहीं, जानने की दरकार भी करते नहीं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है कि जितनी संपत्ति मिलेगी उतना हम सुख, उसी संपत्ति बढ़ेगी इतना हम सुखी हो जाएंगे। और सभी मनुष्य का वही कॉन्सेप्ट है, ये मिसकॉन्सेप्ट है, गलत अभिप्राय है। उसको ठीक किए बिना किसी को शांति मिल नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो बात वो रही कि लगन हो तो मार्ग मिलता है, और लगन सही समझ के बिना सहज उत्पन्न हो ही नहीं सकती। और जिसको लगन उत्पन्न हुई उसकी समझदारी बराबर है, भले ही हमको उसकी बुद्धि ज्यादा नहीं दिखे, लेकिन उसको इस मार्ग की लगन हुई तो हमको इसका आदर करना चाहिए, हमको इवैल्यूएट करना चाहिए, उसको उसकी कीमत ज्यादा मूल्यांकन करना चाहिए। उसको लगन हुई ने तो ये समझदार है, इस मार्ग की लगन हुई वो समझदार है। और कितनी भी बुद्धि हो लेकिन इस मार्ग की समझ नहीं है तो ज्ञानी की नजर में उसकी विचार शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। विचार शक्ति होने के बावजूद भी इसका मूल्य नहीं है, यही कारण है इसका कि उल्टे रास्ते पे वो जा रहे हैं। एक परमाणु में अनंत शक्ति है, एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, लेकिन उससे विनाश भी हो सकता है, उससे काम भी हो सकता है। यूटिलाइज करना या मिसयूज करना वो हमारी मति की गति पर आधारित है कि हमारी मति किस गति पे जाती है, उस पर आधारित है। ताकत तो ताकत है, उसका उपयोग कैसे करना, सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, वो हमारी बुद्धि हमारी मति की निर्मलता पर आधारित है। जिसकी मति मलिन होती है वो विनाश को ले जाएगा। इस तरह से 448 प्रश्न का समाधान है। प्रश्न है 449। यह बात तो बैठती है या समझ में आती है, सम्मत होती है कि यह किए बिना छुटकारा नहीं है, ऐसा उपाय किए बिना छुटकारा नहीं है, और साथ ही कठिन लगता है तो क्या उपाय है? काम कितना भी कठिन हो, अनजाना हो, लेकिन लाभ दिखता है तो उत्साह से किया जाता है। और ये हमारे यहाँ कहावत है कि जहां हरकत है वहीं बरकत है। आसान काम तो सब सब कर लेते हैं, कपड़े की दुकान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 रुपये मीटर लाया 12 रुपये मीटर बेचा, 50 रुपये मीटर लाया 60 रुपये मीटर बेचा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन इसका इंडस्ट्री लगाना कठिन है, कैसे बनाया जाए, कैसे हमको लाभ दिखता है तो हमको करना ही चाहिए, जैसा होता है हम सुबह घूमने जा रहे थे, हमारे आगे 2 बच्चे जा रहे थे, उसके पीठ पे इतने बड़े दफ्तर थे, उठा नहीं सके उतने इतनी किताबें छोटी छोटी उम्र में, क्यों ना बोझा क्यों इतने बच्चे को, थक जाते हैं शाम को स्कूल जाने आने पर, क्यों? तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको इसका लाभ नहीं मिलेगा, अनपढ़ को जो लाभ मिलता है और पढ़े लिखे को जो लाभ मिलता है उसमें फर्क दिखता है, स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखता है, तो हम हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ सकता है कोई कम बुद्धि वाला होता है कम याददाश्त वाला है तो भी प्रयत्न करके पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, सब कठिनाइयां हम इसके लिए तैयार हैं, सभी प्रकार की कठिनाइयों के लिए तैयार है, खर्च भी करना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो इतना बड़ा लाभ है इसके पीछे हम कठिनाई को क्यों गिने, गिनना ही नहीं चाहिए, ये जो कठिनाई कठिनाई वाली बात आती है ये अच्छा सिम्टम नहीं है, बैड साइन है, वो गुड साइन नहीं है। अगर हमको इतना बड़ा लाभ मिलता है तो हमारा हौसला बढ़ना चाहिए, हमारा उमंग उत्साह एकदम तीव्र होना चाहिए, हाँ वो बात है, लेकिन यहाँ ही हम लोग भूलते हैं। देखिए जो जिसको व्यसन है दारू का या सिगरेट का या कुछ भी, तो उनको टेम्पररी प्रत्यक्ष लाभ दिखने में आता है, हमको दिखाया जाता है कि इससे कैंसर होता है, हम कोई 17-18 साल पहले की बात कर रहे हैं, कैंसर के विषय में थोड़ा हम पूछताछ कर रहे थे, तो विश्व में कैंसर का रिसर्च कहाँ हो रहा है तो पता लगाने से चला कि स्विट्जरलैंड में हो रहा है, स्विट्जरलैंड में हमारे एक मुमुक्षु थे उनके साथ हमने पत्र व्यवहार किया, तो बोले कि ये जो देश है बहुत छोटा है लेकिन श्रीमंत है, पैसे वाले बहुत हैं, इतना छोटा सा देश है फिर भी पैसे बहुत हैं लोगों के पास, लेकिन कैंसर बहुत है यहाँ, हर 5 आदमी में 1 आदमी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, मैंने 100 आदमी में 20 आदमी कैंसर वाले हैं, क्यों? तो दारू पीना पड़ता है उन लोगों को, एक तो ठंडा देश है दूसरा टेंशन है बेचैन है, दारू कैंसर लाता है, मांस खाते हैं कैंसर होता है, क्यों? ये मांस में तो कैसे रोगी प्राणी का मांस आया हो तो उसका तो कोई ठिकाना नहीं होता है, उसकी पूरी जांच तलाश तो हो ही नहीं सकती, तो कैंसर तो हो ही जाता है वहां बात बात में हो जाता है, तो प्रत्यक्ष तो दिखता है बहुत कुछ, लेकिन हम ऐसे शॉर्ट साइटेड हमको नहीं होना चाहिए, ये जो हमारा विषय है सुखी होने का, वो एक बहुत दीर्घ दृष्टि का विषय है। संसार में छोटी दृष्टि, शॉर्ट साइट को मूर्खता बोलने में आती है। हमारा एक बच्चा को हम 1,000 रुपया देते कि तुम हमारे पास पैसे, तुम खाओ पियो, मजा करो, खर्चा करो, ले जाओ। तो दूसरे दिन वो बच्चा बोलता है कि दूसरा 1,000 दे दो। तीसरे दिन बोले कि तीसरा 1,000 दे दो, पैसे तो हमारे पास बहुत हैं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, 10 दिन दिया, 10 दिन में 10,000 खर्च कर दिया उन्होंने। फिर हमको पैसा देने की चिंता नहीं है, पैसा कहाँ खर्च किया उसकी चिंता हो ही जाएगी। ये कहेंगे कि तुम सारी जिंदगी कितना भी खर्च करो, पैसे तो बहुत हैं हमारे पास, लेकिन कोई गलत रास्ते पे तो तुम खर्च नहीं कर रहे हो, कोई तुम अपने आप को नुकसान तो नहीं करते हो। ये बात समझनी पड़ेगी। एक दिन में पूरी पूंजी खत्म करना ये मूर्खता नहीं है क्या? भले कितना भी प्रत्यक्ष लाभ दिखे, हमको आने वाले दिन का विचार करना ही चाहिए। भविष्य का जो विचार नहीं करता है वो मूर्ख गिना जाता है। फिर भी हम जो विचार करते हैं, हमारे 150 साल के विचार करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। हमारी जिंदगी का, हमारे बेटे की जिंदगी का, या बेटे के बेटे की जिंदगी का, बस बात खत्म। अध्यात्म के क्षेत्र में उसको शॉर्ट साइटेड गिना है, मूर्ख गिना है। हमारी आत्मा शाश्वत है, अनंत काल हम जिंदे रहने वाले हैं, तो किस हालत में रहेंगे इसका विचार हमें अभी से करना चाहिए। ये दीर्घ दृष्टि का विचार है। सिर्फ 100-200 साल का विचार हमें नहीं करना चाहिए। हमें आने वाले अनंत काल में हमको हमेशा के लिए सुखी होना है। एक दिन के लिए थोड़ा भी दुख है हमें नहीं चाहिए, दुख हमें नहीं चाहिए, और हमेशा के लिए संपूर्ण सुख चाहिए। ऐसा एक ध्येय है, उसी को कहते हैं पूर्णता का लक्ष्य। पूर्ण चाहिए हमको, तो ये हमारा जैन दर्शन का सिद्धांत है कि पूर्णता के लक्ष्य से ही धर्म की शुरुआत होनी चाहिए या मुमुक्षुता की शुरुआत होनी चाहिए। इतना बड़ा विशाल थिंकिंग पे ये सारा स्ट्रक्चर है जैन दर्शन का। ये बात कोई मामूली तो बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा विशाल अनुभव है, उसके पीछे बहुत बड़ा विशाल ज्ञान भी है। और उसका जितना ही समझे उस विषय में हमको इसका बहुमान आए बिना रहेगा नहीं। तो प्रश्न में ये बात नहीं कि बात तो ठीक है, सम्मत होती है कि इसके बिना छुटकारा नहीं है, अगर सुखी होना है तो यही रास्ते पे जाना चाहिए, परंतु कठिन लगता है। ये कठिन लगता है वहां तक ये बात का मूल्यांकन नहीं आया। समझ दो प्रकार की होती है, एक मूल्यांकन रहित और एक मूल्यांकन सहित। बच्चा भी बोलेगा कि ये 100 रुपया की नोट है, लेकिन उसका मूल्य उसको मालूम नहीं है। 3-4 साल का बच्चा है, थोड़ा पढ़ा है, पढ़ाई शुरू हुई तो एक और दो बिंदी है तो 100 रुपया बोलेगा। क्या लिखा है? 100 रुपया बराबर पड़ता है, पर देखो 100 रुपया बराबर पड़ता है। लेकिन 100 रुपया का कीमत कितना है वो उसको पता नहीं है, उनको तो चॉकलेट पेपरमेंट का जो 8-9 रुपया लगता है वही समझ में आता है, 100 रुपया में कितनी चॉकलेट आएगी वो उसको पता नहीं है। तो उसको भी समझ तो है 100 रुपया के, लेकिन मूल्यांकन नहीं है। ऐसे हमारे शास्त्र वचन है इसकी समझ आती है, मूल्यांकन सहित भी आती है, मूल्यांकन रहित भी आती है। जिसको मूल्यांकन सहित आती है उसको लगन लगती है, जिसको मूल्यांकन रहित आती है वो समझते तो है लेकिन बोलते ही बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है। ज्ञानी कहते हैं कि ये कठिन 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 कौन बोलता है, तो इसका आत्मा नहीं बोलता है, इसका मोह बोलता है। कौन बोलता है? मोह बोलता है। वो ज्ञानी जानता है, उसको खुद को पता नहीं है। जिसको मोह ज्यादा है उसको कठिनता ज्यादा लगती है, क्योंकि उसको इस काम की अरुचि होती है। और जिसको रुचि होती है, जिसको जरूरत लगती है, उसको तो लगन लगती है। वो कहते हैं कि जी कितना भी कठिन हो हमको तो करना ही है, कितना भी कठिन हो हम तो करके ही रहेंगे। ऐसे निश्चय करने वाले के लिए वो कठिनाई चली जाती है, तो कठिनाई नहीं रहती है, इतना मार्ग इसके लिए सुगम और सरल हो जाता है। इस तरह से सत्संग के दौरान हमको सही समझ करनी जरूरी है, इसके लिए ये सत्संग है कि हम इसका सही मूल्यांकन कर सके। और वो सही मूल्यांकन मोह कम करने से होता है, मोह जिसको ज्यादा होता है उसको सही मूल्यांकन समझ में आने के बावजूद भी नहीं हो पाता है, ऐसी परिस्थिति होती है।
दो प्रकार के थे, एक तो पुरस्कार दिन का दिन और एक पुरस्कार पूर्वक
कठिन। वो पूज्य बहनश्री ने इस विषय में वचनामृत में एक स्लोगन दिया है कि रुचि वाले को सहज सरल है और अरुचि वाले को कठिन है। तो अरुचि क्यों है? मोह ज्यादा है तो अरुचि है, यानी विरुद्ध रुचि, रुचि बिना का कोई जीव नहीं है। जिसको संसार में मोह ज्यादा है उसको संसार की रुचि ज्यादा है, वो सांसारिक कार्यों में कितनी भी कठिनाई होगा वो दौड़ेगा, दौड़ लगाएगा। और जिसको संसार की अरुचि है और आत्महित की रुचि है वो इतनी दौड़ नहीं लगाएगा। तो अपना विशाल है, वो अमेरिका जाने के पहले हमारे पास आए थे, एक सिटिंग किया हमारा। तो हम जा रहे हैं सत्संग छोड़ के अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन एक जाने का प्रयत्न बहुत टाइम से हो रहा है, तो एक दफे तो जाना है। अब वहाँ क्या करना, कैसे रहना और उस विषय में क्या निश्चय करना चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, काफी डिस्कशन किया। तो हम बोले कि देखो वहां पैसा तो ज्यादा मिलता है, मिलेगा भी, 5-10 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए वहां। कितना? 5-10 साल में कम से कम 30-40 लाख या 50-60 लाख रुपया लेके आप चले आओगे, खर्चा बात करके इतना बचत हो जाएगा। इसका बैंक ब्याज 1% का रखो तो भी एक महीने में 50-60 हजार, तो 30 हजार के लेकर के 50 हजार की इनकम हो जाएगी। और यहाँ जो सर्विस मिलेगी, 8-10 हजार मिलता है, तो वहां से आने के बाद 25 हजार वाली मिलेगी, तो 3 लाख तो वो मिलेगा, 5-7 लाख दूसरा मिलेगा। कितना चाहिए और क्या करना है फिर इसका? सोने की बिस्किट खाए तो नहीं जाते, अगर सोने की बिस्किट ले लेंगे तो भी खाए तो नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, पड़े रहेंगे तिजोरी में। तो मुख्य काम तो है कि हमको हमेशा के लिए सुखी होना है, और वो बात तुम्हारी समझ में थोड़ी बात आई है, तो फिर इसके पीछे हमारी समय और शक्ति का हम खर्च करें। चलो 150 साल के लिए एक व्यवस्था होगी तो होगी, 25-50 लाख रुपया आ गया तो व्यवस्था तो होगी, 5-10 लाख में हो जाती है, 25-50 लाख तो बहुत है, तो व्यवस्था तो खान पीन की रहन सहन की होगी, बात खत्म, मकान होगी, गाड़ी होगी, ये हो गया वो हो गया, बात खत्म, क्या करेगा फिर। अब हमको दीर्घ दृष्टि से हमारे आने वाले अनंत काल के जीवन के लिए हम कैसे सुखी हो जाए, इसके लिए लोगों को इसका साइंस को ढूंढना पड़ता है। हम तो इतने सौभाग्यवंत हैं कि हमारे पास ये पके पकाए हलवा हमको मिल रहा है, तो हम उसके पीछे हमारी शक्ति खर्च करें, इसका सदव्यय करें, ये करने लायक है। उनकी बात तो ठीक है, हम कुछ टाइम के लिए जा करके वापस आ जाएंगे। ऐसे प्लानिंग कुछ शॉर्ट टाइम का प्लानिंग करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा जो ध्येय है, हमारा गोल है, हमारा आदर्श है, हमारा जीवन हमको कैसे बनाना है, हमको कैसे सुखी होना है, वो बात अच्छी तरह हमको सोच लेनी चाहिए। हाँ मालूम है, बात होता है हमेशा, उनको तो है वो बात, उनको अच्छी नहीं पा रही, तो ठीक है थोड़े बहुत ऐसा कमाल बात करता हूँ, टाइम हो गया। कोई पण नवा काम नो प्रारंभ कठण ज होय छे, અથવા કઠણ લાગે તેવો હોય છે, કઠણ નહીં હોવા છતાં પણ પરંતુ આત્મકલ્યાણનો आप समझें, कौमा यथार्थ मूल्यांकन आवे तो उत्साह अने लगनी थी સહજ કામ થાય છે, એમ સમજવા જોઈએ છે। Yeah.
સદગુરુદેવનો જય હો જીનવાણી માતનો જય હો સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય